हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कहाँ थे तुम अब तक? अपने अपार्टमेंट में कदम भी नहीं रखा था उसने, बस दरवाजा ही खोला था कि एक गुस्से भरी कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। चौंकते हुए उसने आवाज की दिशा में नजरें घुमाई। चंद कदमों की दूरी पर माधुरी खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर धरे, गुस्से से लाल आंखों और तमतमाए चेहरे के साथ वो उसे घूर रही थी। साक्षात चंडी का रूप लग रही थी। हालांकि उसे देखकर कबीर को डरना चाहिए था, पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए, मानो उसके तड़पते दिल का करार उसे मिल गया हो। उसने बिना एक सेकंड गवाए दरवाज़ा बंद किया और सीधे माधुरी की ओर लपका। कबीर ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में भरा, माधुरी ने उसके पेट पर कोहनी दे मारी। उसे खुद से दूर धकेलते हुए वो चीख पड़ी, छूना मत तुम मुझे, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ थे अब तक? बेचारा कबीर दर्द से तड़प उठा, अपना पेट सहलाते हुए बेचारगी से बोला, अर्नव के प्लान पर काम कर रहा था यार, कोई अपनी मर्जी से अय्याशी करने नहीं गया था जो इतना भड़क रही हो तुम। माधुरी का गुस्सा अब कुछ ठंडा हुआ। कबीर की बेबसी महसूस करते हुए और उसे दर्द में देखकर माधुरी थोड़ा पिघली। वो उसके पास आकर बिना कुछ बोले उसके पेट को अपनी हथेली से सहलाने लगी। मैं ठीक हूँ, कबीर ने उसकी बांह थामते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, माधुरी ने उसके सीने पर अपनी हथेलियाँ टिकाते हुए उसे खुद से दूर किया और आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। तुमने शराब पी? थोड़ी सी, उसका साथ देने के लिए। कबीर ने एक बार फिर बेबस, लाचार और मायूस सा चेहरा बनाया। माधुरी कुछ पल उसे घूरती रही, फिर मुंह बनाते हुए उसके सीने से लग गई। कबीर ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया। कहीं न कहीं दोनों के ही दिल का हाल बेहाल था। एक तरफ माधुरी थी जो उसे सृष्टि के साथ देखकर परेशान हो गई थी, तो दूसरी तरफ कबीर था जो सृष्टि से उन अनचाहे नज़दीकियों के कारण कुछ परेशान हो गया था। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहे, अपने बेचैन दिल को सुकून पहुंचाते रहे। फिर कबीर ने धीरे से माधुरी को खुद से दूर किया और उसके गर्दन पर अपनी हथेली दिखाते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा लिया। माधुरी असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते लगी। कबीर की आंखों में आज उसे कुछ अलग से भाव नजर आ रहे थे। वो अभी उन भावों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कबीर उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। अगले ही पल दोनों के लब आपस में टकरा गए। माधुरी के लबों को शिद्दत से चूमने के बाद जैसे ही कबीर उसके ज्यादा नज़दीक जाने लगा, माधुरी जो अब तक उसके लबों के स्पर्श को अपने होंठों पर महसूस कर रही थी, एकदम से उससे दूर होने लगी। कबीर, शादी से पहले? उसने अभी इतना ही कहा था कि कबीर ने उसकी कमर कसकर जकड़ते हुए उसे एक बार फिर से खुद से सटा लिया और बेचैनी से बोला, कमौन यार मधु, तुम्हें पता भी नहीं है आज जब वो सृष्टि बार बार मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी तो कैसा लग रहा था मुझे। आई नीड यू यार। कबीर ने चंद शब्दों में अपनी स्थिति और दिल के हाल को बयां कर दिया था। उसके शब्दों में उसकी तड़प और बेकरारी झलक रही थी। उसके इस सॉफ्ट रिक्वेस्ट और चाहत को माधुरी ठुकरा ना सकी। कबीर की आंखों में देखते हुए उसने पहले उसके माथे को, फिर उसकी पलकों को, गालों को और अंत में उसके लबों को चूम लिया। फिर अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए मुस्कुरा दी। अब खुश या अब मेरी नज़दीकियों में भी तुम्हें उस चुड़ैल की नज़दीकियाँ महसूस हो रही हैं? उहू, अब तो मन से लेकर तन तक सब तुम्हारे एहसासों से सराबोर है। कबीर के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपनी नाक को उसकी नाक से टच करते हुए कहा, बहुत क्यूट हो यार तुम, मुझे हर बार तुमसे और भी गहरी मोहब्बत हो जाती है। उसकी बात सुनकर माधुरी भी मुस्कुरा दी और उसकी बांह थामते हुए उसे उसके कमरे में ले गई। फिर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसकी गोद में बैठते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। क्या हुआ माधुरी? कबीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। माधुरी ने उसको और कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम ऐसे ही रहो, मैं कुछ देर यूं ही तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहना चाहती हो या मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? कबीर ने भौहें उठाते हुए सवाल किया। ये सुनकर माधुरी ने उसकी गर्दन से सर बाहर निकालते हुए उसे देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वो चुड़ैल आकर तुमसे लिपट गई थी। कबीर महसूस कर रहा था कि कितनी तकलीफ में है वो। उसने प्यार से उसके गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ, पर तुम भी जानती हो ना कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी जिंदगी और दिल में तुम्हारे अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं। जानती हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी बहुत आया था। कुछ वक्त के लिए ये सब बर्दाश्त कर लो। एक बार सृष्टि को उसके किए की सजा मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने उसे समझा बुझाकर उसकी उदासी और मायूसी दूर करने की कोशिश की, पर इसका कुछ खास असर ना हुआ। वो अब भी बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। कबीर कुछ पल सोचता रहा कि कैसे उसको नॉर्मल किया जाए, फिर कुछ सोचते हुए उसे लेकर बेड पर लेट गया। माधुरी उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर। कबीर ने उसके उदास मुरझाए हुए चेहरे को देखा, फिर उसके चेहरे पर बिखरी लटों को संवारते हुए बोला, वैसे तुम इतनी शैतान हो ये मुझे आज पता चला। कितना परेशान किया तुमने उस बेचारी को। मैं तो हक्का बक्का सा देखता ही रह गया तुम्हारा ये रूप, पर कसम से मज़ा बहुत आया मुझे। उसकी बात सुनकर माधुरी झट से बोल पड़ी, वो तो कुछ भी नहीं था। मेरा मन तो कर रहा था कि उसके मुँह पर कपड़ा बांध कर इतना धोऊं उसे कि उसकी हड्डी पसली टूट जाए, पर मैंने अपने गुस्से पर बहुत काबू किया, वरना तुम्हारा प्लान खराब हो जाता। उसकी बात सुनकर कबीर हंस पड़ा, फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सॉरी जान, बस कुछ वक्त, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड डोंट वरी, मुझे कभी कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, चाहे सामने सृष्टि हो या कोई अप्सरा। मेरी नजरों में दुनिया की सबसे हसीन लड़की तुम हो और मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, इतना कि अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं खुद को ही खो बैठूंगा। माधुरी ने पलट कर कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने से अपना सर टिकाते हुए उसकी पीठ पर अपनी बाहों को लपेट दिया। टू बी कंटिन्यूड।